पृष्ठ संख्या 119, अध्याय 10। सुषमा ने दरवाजा खोला तो सामने महेंद्र को खड़ा देखकर घूम गई। अरे तुम, और जम्हाई लेती हुई कमरे के अंदर लौटने लगी। मुझसे तुमने कहा तो नहीं कि तुम आओगे, सो रही थी क्या? महेंद्र ने पीठ पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। नहीं तो, यूं ही बैठी थी, दिन को मुझे नींद ही कहाँ आती है। सुषमा ने पीठ फेरे फेरे ही कहा और एक और जम्हाई लेती हुई कमरे के अंदर जाने लगी। तभी महेंद्र ने आगे बढ़कर सुषमा को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे जोर से अपनी ओर घुमाकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। सुषमा झटके से उससे अलग हो गई। क्या हो गया है आज तुम्हें, उसने पीछे हटते हुए कहा, तुम तो बहसी हुए जा रहे हो। महेंद्र तनिक खिसिया गया पर फिर आगे बढ़कर उसे कंधों पर से पकड़ते हुए बोला, मिलने पर सबसे पहले स्त्री को चूमा जाता है। मुझे नहीं लगता, सुषमा ने तुनक कर कहा, फिर संभल गई। तुम मर्द लोग तो जानवर होते हो, नीरे जंगली मांस के भूखे, और तुम औरत क्या होती हो? यह भी कोई ढंग है प्यार करने का? मेरी गर्दन झिझोड़ दी, सुषमा ने अपनी गर्दन मलते हुए कहा। महेंद्र फिर खिसिया गया मगर हंसकर बोला, मुझे तो इसी तरह वहशी प्यार ही अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे कपड़े फाड़ दूँ, तुम्हारा शरीर रौंद डालूँ। मुझे वह औरतें कभी भी पसंद नहीं आईं जो बहुत बन संवर कर रहती हैं। महेंद्र ने अपना कोट उतार कर बेतकल्लुफी से सोफे की पीठ पर फेंकते हुए कहा, मुझे वे औरतें पसंद हैं जिनके बाल उलझे हों, कपड़े अस्त व्यस्त हों, कुर्ता छाती पर से मैला हो, बेशक दो एक जगह से फटा हो। मुझे अलसाई अलसाई सी औरतें पसंद हैं, उनींदी उनींदी। चुस्त दुरुस्त औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत सूझबूझ वाली औरतें जो सारा वक्त एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती फिरती हैं, मुझे कतई पसंद नहीं। जो हर 5 मिनट बाद बैग खोलकर शीशा देखें, मुंह पर पाउडर लगाएं, लिपस्टिक ठीक करती फिरें, डॉट डॉट। सुषमा उबने लगी थी। महेंद्र अपनी इस पसंद की गर्दान बीसियों बार दोहरा, पृष्ठ संख्या 120 चुका था। ढीली ढीली औरतें अच्छी होती हैं, वह सोफे पर बैठा कहे जा रहा था, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसका शरीर भी ढीला हो, शरीर कसा हो, अदाएं ढीली हो। मेरा यह मतलब है, मांस के लोथड़े को कोई क्या करे। प्रमिला तो बहुत चुस्त नहीं थी, ढीली ढीली थी, उसे तुमने क्यों छोड़ दिया, अनायास ही सुषमा के मुंह से निकल गया। महेंद्र को लगा जैसे सुषमा ने चाबुक मार दी हो। तीखी नजर से सुषमा की ओर देखकर बोला, प्रमिला में सेक्स नहीं था, ठंड ही थी, लाश की लाश पड़ी रहती थी। सुषमा ने मानो सुना अनसुना कर दिया और सोफे के पीछे से हटकर सदा की तरह धीरे धीरे खिड़की की ओर जाने लगी। महेंद्र जानता था कि वह खिड़की का पर्दा गिराएगी, मगर सुषमा की गति में कोई उत्सुकता अथवा व्यग्रता नहीं थी, बल्कि आधा पर्दा खींच चुकने के बाद वह लौट आई और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। महेंद्र सोफे पर बैठा देखता रहा। सुषमा के सोफे पर बैठ जाने के बाद उसने स्वयं आगे बढ़कर बाकी का पर्दा खिड़की पर गिरा दिया। सारा का सारा पर्दा क्यों नहीं गिराया? यों ही, सुषमा ने थकी सी आवाज में कहा। इस वाक्य में भी महेंद्र के अहम को धक्का लगा, मगर वह चुप बना रहा। क्या पियोगे, चाय या कॉफी, सुषमा ने पूछा। यह प्रश्न भी घिसा पिटा प्रश्न था। तुम्हारे पास और कुछ पिलाने को है ही क्या? जो पिलाओगी पी लेंगे। आज पटरी बैठ नहीं रही थी, दोनों उखड़ा उखड़ा महसूस कर रहे थे। लाओ कॉफी ही पिलाओ, या छोड़ो कुछ भी नहीं पियेंगे। तुम हमेशा पहले यही कहते हो, बाद में पीने भी लगते हो। और सुषमा चुपचाप उठकर रसोई घर की ओर चली गई। महेंद्र सकपका गया, उसे लगा जैसे सुषमा की उदासीनता उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सहसा आवेश में वह उठ खड़ा हुआ और लपक कर रसोई घर की दहलीज तक जा पहुंचा। यह मत समझो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, एक बार मेरे साथ रुखाई से बोलोगी तो उम्र भर मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। सुषमा ने सिर झटक दिया और कंधे बिचका दिए। इस खोखले दम्भ से वह अब तक अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी। अनेक बार वह इस तरह की पृष्ठ संख्या 121 धमकियां दे चुका था, पर 2 दिन से ज्यादा उससे दूर नहीं रह पाता था। इस दौरान महेंद्र का पहला रूप मुखौटी की तरह गिर चुका था। जब तक संयत गंभीर मुस्कुराती मुद्रा से बात किया करता था, उसका एक एक वाक्य दृढ़ता का परिचायक हुआ करता था। भले ही मुस्कुराते मुस्कुराते जहर में बुझा डंक मार दे, वह जान गई थी कि प्रमिला के चले जाने के बाद वह अपना संतुलन खो बैठा है और उखड़ा उखड़ा भटकने सा लगा है। हर जिंदगी किसी न किसी खूंटे से बंधी रहे तो वह अपना संतुलन बनाए रखती है, खूंटा टूट जाए तो वह जैसे अधर में लटक जाती है। प्रमिला के चले जाने के कुछ ही दिन बाद आज़ादी और स्वच्छंद प्रेम की भावना छीड़ पड़ने लगी थी। शाम के वक्त घर भाएं भाएं करने लगता। शुरू के दिनों में जिंदगी का ढर्रा बदलने के लिए उसने घर में बहुत सी तब्दीलियां कर दी थी। अपना पलंग वह बैठने वाले कमरे में ले आया था, साथ में अपने कपड़ों की अलमारी भी। प्रमिला के कपड़े उसके एक ट्रंक में बंद करके कोठरी में रख दिए थे। बरामदे में से अलगनी का तार उतार दिया था, जिस पर प्रमिला धुलाई के कपड़े टांगा करती थी। बाजार से हरे शेड वाला एक टेबल लैंप ले आया था। दफ्तर से घर लौट कर वह अपने लिए चाय तैयार करता, चाय की ट्रे बैठक में आराम कुर्सी के साथ रख लेता और हरे शेड वाले लैंप की रोशनी में चाय की चुस्कियाँ और सिगरेट के कसों के साथ हुआ सारी शाम कोई पुस्तक पढ़ता रहता। ऐसे समय में उसे किसी गंभीर पुस्तक का अध्ययन करना अच्छा लगता, विशेषकर दार्शनिक पुस्तक का। इस दिशा में उसे प्राचीन लेखक यूनान और प्राचीन रोम के लेखक पसंद थे। कमरे के शांत वातावरण में उसे यह लगता कि वह किसी शांत नीली झील पर नौका में बैठा चला जा रहा है। महेंद्र को सुषमा की गुनगुनाती आवाज गहन रहस्यमयी कांदराओं में से गूंज गूंज कर आती सी सुनाई देती थी। उन दिनों सुषमा के साथ बिताए एक एक क्षण में धड़कन थी, उन्माद था। उसे लगता जैसे सुषमा की मुट्ठी में उसकी जान है। सुषमा उसे रिझाने के लिए नई नई साड़ियां बदलती, तरह तरह के बाल बनाती, कभी बालों में बड़ा सा झूल टांक लेती, कभी फूलों का गजरा टांक लेती, कभी माथे पर छोटी बिंदी लगाती, कभी बड़ी। महेंद्र उस वक्त तक चाय के प्याले को मुंह नहीं लगाता था जब तक सुषमा उसे अपने होठों से छू ना ले। दोनों एक ही प्याले में घूंट घूंट भर करके पिया करते थे। सुषमा तरह तरह से उसे जुठलाती, छोटी छोटी शरारतें करती, उसकी चीजें छिपा देती, उसके जेब में तरह तरह के पुर्जे लिखकर डाल देती। सुषमा जब पृष्ठ संख्या 121 रसोई घर में होती तो महेंद्र उसकी चीजें उठाकर चूमता रहता। सुषमा की आसमानी रंग की साड़ी की तहों में महेंद्र मुंह लपेटता हुआ उसे पागलों की तरह चूमा करता। सुषमा के शरीर की गंध कमरे में छाई रहती और वह उसमें मतवाला बना डोलता रहता। पर इस उन्माद को छनते देर नहीं लगती। प्रमिला रास्ते का रोड़ा थी जरूर, पर एक प्रकार की आड़ हट जाने पर ये लोग अन्य लोगों की नजरों में आने लगे थे। आए दिन कोई न कोई उंगली उठा देता था। सतवंत जिस रोज दफ्तर के डायरेक्टर से मिलने गई, उस रोज वह सुषमा से भी जा मिली और दफ्तर के अनेक लोगों के सामने उसे बुरी तरह फटकार आई थी। प्रमिला के चले जाने से ये प्रेमी आजाद तो हो गए थे, पर साथ ही एक दिशाहीन विस्तार में जा पहुंचे थे जिसका कोई कुल किनारा ना था। इसमें वह केवल अबाध रूप से बेरोक टोक घूम सकते थे, पर उसके सामने कोई गंतव्य ना था। दोनों की आंखों के सामने कोई साझा भविष्य नहीं था जिसे वह इस कमरे की घुटन भरी परिधि के पार देख सकते हों। वर्तमान ही वर्तमान था और वर्तमान से कब कोई संतुष्ट हुआ है। सुषमा महेंद्र के साथ शादी करने को तैयार हो जाती यदि महेंद्र चाहता तो, पर महेंद्र शादी करना नहीं चाहता था। इस कारण उनके प्रेम संबंध में एक तरह का खिंचाव आना अनिवार्य था। अब वे एक दूसरे के लिए रहस्य नहीं रह गए थे। इस संबंध में से जादू उड़ने लगा था। शीघ्र ही सुषमा हाड़ मांस की स्त्री लगने लगी थी। पास बैठी होती तो उसकी गालों के मांसाम नजर आने लगते। उसके नाखूनों पर से उखड़ा हुआ रंग महेंद्र को भद्दा लगने लगा था और सुषमा के शरीर से उसे स्थूलता का भास होने लगता। उसे कभी कभी लगता जैसे सुषमा का सांस धोकनी की तरह चलता है। सुषमा के व्यक्तित्व में उसे छिछलापन नजर आने लगा था। उसे लगने लगा था जैसे सुषमा में सुचारुता नहीं है। उसने प्रेम के कुछ एक वाक्य रट रखे हैं, कुछ एक अदाओं का अभ्यास कर रखा है जिन्हें वह बड़ी निपुणता से दोहराती रहती है। अपने डूबते प्रेम को बचा पाने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। वे उत्तेजना के नए नए माध्यम ढूंढते, लोगों से नजरें बचाकर कभी शहर के बाहर निकल जाते, किसी मकबरे के आसपास झाड़ियों के पीछे जा बैठते, कभी किसी रेस्तरां में या सिनेमाघर में जा बैठते। इस संबंध में आकर्षण तो था, भूख तो थी, पर पहले जैसी तृप्ति नहीं रह गई थी। अब अपने घर लौटते समय महेंद्र दबी आवाज में उसे गालियां भी देने लगा था। अब वे दोनों कभी कभी एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने भी लगे थे, कभी सुषमा का तो कभी महेंद्र का बैठे बैठे पारा तेज होने लगता। पृष्ठ संख्या 123। दोनों के बीच किसी न किसी वक्त घृणा की ज्वाला भड़क उठती। उसकी जलती शिखा सांप की जीभ की तरह कमरे में कांप जाती, फिर शीघ्र ही शांत भी हो जाती। दोनों अपने को संयत कर लेते, यह जानते हुए भी कि दोनों का आपस में मूलतः कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। जमाना था जब इस कमरे में प्रवेश करने पर उत्तेजना और गहन प्रेम की लौ सी महेंद्र के अंदर जलने लगती थी और कमरे की हर चीज पर अलौकिक नीलिमा सी छा जाती थी। पर अब स्थिति बदल चुकी थी। अब वासना की चाबुकें मार मार कर उस उत्तेजना को जगाना पड़ता था। वासना जाग जाए तो कुछ देर के लिए कमरे में लाली छिटक जाती थी। वासना बुझी बुझी रहे तो वातावरण बोझिल सा बना रहता था। जमाना था जब कमरे में फैली सुषमा के शरीर की गंध उसे मतवाला बना देती थी। अब यही गंध असह्य होने लगती थी। उसमें कसैलापन, बासीपन आ गया था। अब उसमें जैसे पुराने पड़ते प्रेम की सडांध मिलने लगी थी। निजी तौर पर दोनों की स्थिति असहाय सी होती जा रही थी। महेंद्र अंदर से छटपटाता हुआ विवश होकर सुषमा के पास आता था, हालांकि बाहर से वह इस बात को जाहिर नहीं होने देता था। दफ्तर का वक्त खत्म होने पर जब वह दफ्तर के बाहर की सीढ़ियों पर खड़ा होता तो कहाँ जाऊँ का प्रश्न लपक कर उसके सामने खड़ा हो जाता। उसे लगता जैसे उसकी आंखों के सामने धूसर प्रसार फैला है और उसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। तब उसे रिक्तता का भास होता और शाम के साए जैसे सीधा उसके दिल पर गहराने लगते। कहाँ जाऊँ, सिनेमा देखाऊं, ला बोहेम में जा बैठूं, सुषमा के यहाँ चला जाऊं। सुषमा के आकर्षण में अभी भी वासना की चुभन थी। रेस्तरां में बैठने में अलसाहट का भास था। सिगरेट फूंको और निष्प्रयोजन बैठे रहो। सिनेमा में मन बहलाव था, मगर बाद में दिल में रिक्तता सी भर भर जाती थी। लगता था शून्य में पटक दिया गया है। जहाँ भी जाओ बाद में दिल में रिक्तता भर जाती थी और असह्य थकावट का भास होता था। सुषमा उसकी स्थिति को समझती थी। वह जानती थी कि महेंद्र की नज़र में उसकी कीमत बढ़ गई है। साफ साफ जैसे आंखों के तराजू पर ही उस बढ़ती कीमत का अंदाजा लगा लिया करती थी। वह जानती थी कि महेंद्र अधिकाधिक निराश्रय होता जा रहा है और डगमगाता हुआ उसके पास सहारा लेने के लिए आता है। पर वह यह भी जानती थी कि महेंद्र उसके अवलंब को अंदर ही अंदर बालू की भीति का सा अवलंब मानता है। या तो वह किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर वह दूसरी स्त्री की बाहों में अवलंब। पृष्ठ संख्या 124। ढूंढेगा या प्रमिला को वापस बुला लेगा। उधर सुषमा की अपनी स्थिति जटिल होती जा रही थी। उसके क्षितिज पर एक वर्मा जी प्रकट हो गए थे। वर्मा जी दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर थे। सतवंत इन्हीं के पास महेंद्र की शिकायत करने आई थी। महेंद्र के खिलाफ तो वर्मा जी क्या एक्शन लेते। सुषमा के प्रति उनकी लार टपकने लगी। वर्मा जी में बहुत दम नहीं रह गया था, पर गीली गीली नमदार आंखों में वासना तैरती रहती थी। अगर इतने बड़े अफसर ना होते तो उनके पीले ढलके हुए चेहरे और लिजलिजे व्यक्तित्व से सुषमा को मतली आ जाती। एक बार तो सुषमा को प्यार करते समय वर्मा जी के मस्नूई दांत अपनी जगह से उखड़ गए थे और उन्हें तर्जनी और अंगूठा मुंह में डालकर उन दांतों को अपनी जगह पर फिट करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त वर्मा जी प्रेमालाप करना भी नहीं जानते थे। देर तक चुपचाप बैठे वासना भरी आंखों से सुषमा की ओर देखते रहे या फिर अपने घर की बातें करने लगते। अपनी पत्नी की कि वह चिड़चिड़े स्वभाव की है पर दिल की अच्छी है, कि उन्होंने गाजियाबाद में जमीन ले रखी है और जहाँ अवकाश प्राप्त करने के बाद वह घर बनाएंगे, कि उनके रिटायर होने में अभी 1.5 साल बाकी है। सुषमा को वह कभी निरीह लगते, कभी अपाहिज। उनकी बड़ी बड़ी नमदार आँखों के नीचे गुमड़ थे। बातें करते करते कभी उनकी आँखें भर जाती तो पानी टपक कर इन गुमड़ों में भर जाता था। लेकिन दफ्तर में उनका बड़ा दबदबा था। अपने दफ्तर में से निकलते तो बरामदे भर के चपरासी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते, बल्कि सारे दफ्तर में खबर फैल जाती कि साहब आ रहे हैं। यो वर्मा काइया था, दफ्तर की बात को बीच में नहीं आने देता था। एकाध बार सुषमा ने अपनी कन्फर्मेशन की बात चलाई तो वर्मा ने बड़े नपे तुले डायरेक्टरी ढंग से कह दिया, तुम्हारा मामला महेंद्र के कारण कुछ बिगड़ गया है, अभी ठहर जाओ, वक्त आने पर ठीक कर दूंगा। तब से सुषमा एक तरह से अधर में लटक गई थी। वह नहीं चाहती थी कि एक और जंजाल खड़ा हो जाए। वह यहाँ से निकल जाना चाहती थी। महेंद्र को इस नए मामले की खबर नहीं थी, इसी कारण वह ताज्जुब करता रहता था कि सुषमा में उसके प्रति बेरुखी क्यों आती जा रही है। सुषमा की दृष्टि में वर्मा जी की तुलना में महेंद्र में अभी भी कहीं अधिक आकर्षण था। वर्मा लिजलिजा था, बूढ़ा था, पिलपिला था, गंजा था। उसकी बातों में कोई रस नहीं था, स्फूर्ति नहीं थी। महेंद्र लड़ता तो था, कस्में तो खाता था, कभी कभी अपने बाल तो नोचता था। महेंद्र के साथ उसे गहरा प्रेम भी हो गया था, मगर पृष्ठ संख्या 125 प्रमिला को भेजकर महेंद्र ने एक सहज स्थिति को जटिल बना दिया था, और सुषमा की अपनी स्थिति उत्तरोत्तर अधिक जटिल बनती जा रही थी। डॉट डॉट महेंद्र इस बीच सोफे पर पसर गया था और अधमुंदी आंखों से सामने दीवार की ओर देखे जा रहा था। वही पर्दे, वही सोफा, ड्रेसिंग टेबल पर रखे सुषमा के वही सस्ते जेवर। वह ऊब रहा था और उत्तरोत्तर आत्म अनुकंपा से भरता जा रहा था। उसकी नज़र दीवार पर लगी छिपकली की ओर गई और वह सिर से पांव तक जैसे कांप गया। वही छिपकली थी दीवार से चिपटी, उस बनावटी छिपकली से उसकी अपनी स्थिति मिलती सी जान पड़ी। सुषमा काफी बनाकर ले आई। चलो कहीं बाहर चलें, महेंद्र ने कहा। मैं इस कमरे से ऊब गया हूँ। सुषमा चुप रही। कोई जवाब देगी तो वह कुछ और सख्त सुस्त कह देगा। तुम्हारे पास कोई और साड़ी नहीं है पहनने को? रोज यही आसमानी रंग की साड़ी पहने रहती हो। सुषमा कट कर रह गई। अब यह साड़ी इसे अखड़ने लगी थी। इसी की तहों में मुंह ढांप ढांप कर वह इसे चूमा करता था। सुषमा से न रहा गया। मैं बड़ी अफसर तो नहीं हूं कि मेरे पास साड़ियों का ढेर लगा रहे। एक साधारण कैशियर ही तो हूं। इस बकवास का क्या मतलब है? मैंने कुछ नहीं तो 1,000 रुपये के तोहफे तुम्हें दिए होंगे। मैं तुमसे मांगने नहीं गई थी, तुम खुद लाए थे। आज भी उनमें से जो मेरे पास है उन्हें ले जाओ। और सुषमा ने अपने गले में पहना सफेद मोतियों का हार उतार कर महेंद्र के सामने सोफे पर पटक दिया। मैं इतना कमीना नहीं हूं कि दी हुई चीज को वापस लेता फिरूं। सच तो यह है कि मुझे भूल चुका है मैंने तुम्हें क्या दिया है। तुम्हें कुछ भी नहीं भूला, तुम्हें एक एक चीज याद है। आज नहीं तो 10 दिन के बाद उन चीजों को मेरे सामने गिना दोगे। महेंद्र सोफे पर उठ बैठा। मैंने आखिर तुमसे क्या कहा है? यही कहा है ना कि आसमानी रंग की इस साड़ी के अलावा कोई दूसरी साड़ी तुम्हारे पास पहनने को नहीं थी। यही कहा है ना कि कुछ और तुम अंटसंट बकने लगी हो। अगर तुम्हें मेरे तोहफे मंजूर नहीं तो लिए क्यों थे? अगर तुम्हें यह हार नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। पृष्ठ संख्या 126। और आवेश में महेंद्र ने सोफे पर से मोतियों का हार उठाकर और सीधा खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाकर उसे बाहर फेंक दिया। कमरे के बीचों बीच खड़ी सुषमा आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। यह तुमने क्या किया है? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे हो गया है, मुझे कुत्ता काट गया है। तुम इसे उतार कर मेरे सामने फेंक सकती हो तो मैं इसे खिड़की के बाहर भी फेंक सकता हूँ। सुषमा उन्हीं कदमों पहले तो लपक कर खिड़की के पास गई और पर्दा हटाकर नीचे झांकती रही और फिर सहसा सीधे कमरे से बाहर चली गई। दोनों हाथों में अपना माथा थामे महेंद्र सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। सुषमा लौट आई थी और हाथ में हार पकड़े मुस्कुरा रही थी। तुम इतने गुस्सैल हो, मुझे मालूम नहीं था। फिर महेंद्र के पास आकर उसके बालों को सहलाती हुई बोली, लो इसे अपने हाथों से मुझे पहना दो। बहुत गुस्सा नहीं करते? अगर मुझसे ऊब गए हो तो मेरे पास नहीं आया करो। मैं यूं भी शीघ्र ही यहाँ से चली जाऊंगी, तुम चिंता नहीं करो। महेंद्र इस पर बेबस सा सुषमा से लिपट गया और बच्चों की तरह सुबकने लगा। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा। सुषमा धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। इस खंडित प्रेम को जोड़ पाना असंभव था, पर ऐसे क्षणों में लगता था वह अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है। महेंद्र बहुत दूर नहीं देख पाता था, लेकिन सुषमा जो स्थिति के प्रति अधिक जागरूक थी उसे भी ऐसे समय में भास होने लगता कि उसके प्रेम में शायद अस्थायित्व तो आ जाए और वह सभी जटिलताओं में से बचकर निकल जाए। सुषमा की स्थिति महेंद्र की स्थिति से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। महेंद्र के बालों को सहलाते हुए एक अनूठा सा विचार सुषमा के मस्तिष्क में कौंध गया। अगर महेंद्र को वर्मा जी के बारे में पता चल जाए तो इसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी? फिर स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए मन ही मन बोली, इससे तो लकवा मार जाएगा। और तभी उनकी स्थिति पर क्रूर प्रहार करते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार, बिल्कुल नपी तुली, और दोनों के कान खड़े हो गए। वर्मा जी ठीक 3 बार ही दस्तक दिया करते थे।